जिना इजहार उल हक़ साहब का मज़मून, क्या तुम लोग खास के ऊपर से हटोगे 22 फरवरी 2022 को रोज़ावा की जब शामिल। जब से होश संभाला है हम और आप सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबा देने खड़े हुए, तो हाजिरी में से एक ने इतराज किया कि पहले ये बताइए एक चादर से आपका कुर्ता कैसे बन गया, क्योंकि हुकूमत की तरफ से सबको एक एक चादर मिली थी और एक चादर में तो आप जैसे तवील मुकाम शख्स का कुर्ता बन ही नहीं सकता। इस पर अमीरुल मोमिनीन के बेटे ने वजाहत पेश की कि उन्होंने वालिद गिरामी को अपनी हिस्से की चादर दे दी थी ताकि उनका कुर्ता बन जाए। इस वजाहत के बाद ही आप खुतबा दे सके। जब से होश संभाला है हम और आप सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा करम अल्लाह वजू की ज़रा खो गई। आप उस वक्त खलीफा वक्त थे। कुछ अरसे के बाद आपने देखा कि आपकी ज़रा एक यहूदी पहने हुए था। आपने उसे बताया कि ये ज़रा आपकी है। उसने इसरार किया कि उसकी अपनी है। मामला अदालत में ले जाया गया। आप मुसलमानों के हुक्मरान थे मगर एक आम मुद्दई की तरह अदालत में पेश हुए। अदालत ने कानून के मुताबिक दो गवाह तलब किए। आपने अपने गुलाम और साहबजादों हसनैन करीमैन को बतौर गवाह पेश किया। अदालत ने गुलाम की गवाही तस्लीम की मगर कहा कि बेटी की गवाही वालिदगी हक में कबूल नहीं की जा सकती। फैसला यहूदी के हक में हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने सरबराह मुल्कत होने के बावजूद अपने खिलाफ अदालत का फैसला कबूल किया। जब से हमने और आपने वो संभाला है क्या ऐसा वाकया देखा भी है? क्या 55 मुसलमान मुल्कों में ऐसा वाकया हमारे जमाने में मौजूद हुआ है? कानों ने बहुत कुछ सुना है, क्या आंखें भी कभी फैजियाब हुई? चलिए खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद तो बादशाह ने डेरा जमा लिया। आमरियत आ गई। हुज्जाज बिन यूसुफ के सामने जो सच बोलता उसकी गर्दन मार दी जाती। मोहम्मद बिन कासिम का क्या अंजाम हुआ? अहले बैत की कितनी ही नस्लें सच बोलने पर शहीद की जाती रही। अब्बासी बादशाहों ने इमाम अबू हनफिया और इमाम बिन हम्बल जैसे बुलंद मर्तबत फुकहा तक को सिद्क मुकाल के जुर्म में खौफनाक तरीकों से अजियतें दी। सलातीन दिल्ली जिंदा इंसानों के खाले उतरवाते रहे। काजी शहर को सच बोलने के जुर्म में मरवा दिया गया। मुगल बादशाह ऊंचाई से गिराकर मरवा देते। जबानें खींच ली जाती, नस्लें खत्म कर दी जाती, मगर वो जमाने जा चुके। अब तो जमहूरियत का जमाना है। क्या आज किसी मुसलमान मुल्क में हुकुमरान के सामने खड़ा होकर आंखों में आंखें डालकर कोई बात कर सकता है? चलिए यहाँ भी हम बादशाह ज्यादा मुल्कों की बात नहीं कर, जमाल खाशकजी के साथ जो कुछ हुआ उसे भी छोड़िए, उन मुसलमान मुल्कों की बात कर लेते हैं जो जमहूरी कहलाते हैं। भुट्टो साहब कितना सर्च बर्दाश्त करते थे, कितनों को तो मरवा ही दिया। दलाई कैम तारीख का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ, तीन बड़ी पार्टियों के इजलासों में कितने अरकान खड़े होकर लीडरों की आंखों में आंखें डालकर सच बोल सकते हैं? पार्टियों के सरबराहों को जाने दीजिए। इन सरबराहों के बेटों, बेटियों और बेगबाद के हुक्म से कौन सरताबी कर सकता है? कौन उनकी कही हुई बात को गलत करार दे सकता है? मीडिया आजकल जिस आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है खुला राज है। कल की खबर है कि तुर्की में एक सहाफ़ी गुंगर अरसलान को गोली मारकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया क्योंकि वह सरकारी करप्शन की तफ्तीश कर रहा था। प्रेस की आज़ादी के आलमी इंडेक्स में पहली 10 पोजीशनों पे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, कोस्टा रिका, नीदरलैंड, जमैका, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड फाइव से। कुवैत का नंबर 105, इंडोनेशिया का 113, मराकश का 136, पाकिस्तान का 145, तुर्की का 153, मिस्र का 166, सऊदी अरब का 170 और ईरान का 174 है। ये इम्तियाज सिर्फ मुस्लिम मुल्कों को हासिल है। कोई भी शख्स हुकुमरान के सामने बेधड़क बात कर सकता है बकौल फरोख। हर एक से कहां बारे निशात उठता था, बुलाएं ये भी मोहब्बत के सर گئی ہوگی. بالکل اسی طرح مسلمانوں کے اولین دور میں کوئی بھی کر سکتا تھا. یہ تو کئی سال پہلے کا واقعہ ہے کہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اسپتال میں مریض کی عیادت کو گیا. وہاں جو ڈاکٹر انچارج تھا اس نے وزیر اعظم کو ڈانٹا اور قواعد پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے باہر نکال دیا. صدر کلنٹن کو کٹہرے میں کھڑا کر دینے والا واقعہ بھی ماضی بعید کا حصہ بن چکا. ماضی قریب کا واقعہ سن لیجیے. آسٹریلیا کا وزیر اعظم اسکاٹ موریسن دارالحکومت کی نوائی بستی کا دورہ کر رہا تھا. ایک لان پر کھڑے ہو کر اس نے پریس کانفرنس شروع کی. رفقائے کاروں رپورٹرز وغیرہ بھی ساتھ تھے. ایک دروازہ نکلا اور چیخا, کین ایوری بڈی گیٹ آف دی گراس پلیز کم آن, ہے گائز آئی ہیو جسٹ ریسیڈڈ دیم, کیا تم لوگ گھاس پر سے ہٹو گے؟ ارے بھائی میں نے ابھی ابھی نئی گھاس لگائی ہے. وہ وزیر اعظم فوراً گھاس سے ہٹ گیا. دوسرے لوگوں کو بھی ہٹنے کو کہا. لان کے مالک نے کہا سوری می اور پھر گھر کے اندر چلا گیا. یہ ذہن میں رکھیے کہ آسٹریلیا میں میٹ کا لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم کسی کو یار یا بھائی کہہ دیں. کوئی ایف آئی اے اس شخص کے پیچھے نہیں لگی, کسی نے اسے ہراساں نہیں کیا, کوئی جھوٹا مقدمہ اسے سبق سکھانے کے لیے نہیں بنایا گیا. برطانیہ اور آسٹریلیا کے وزراء اعظم خلفائے راشدین کے قدموں کی دھول بھی نہیں, مگر سچ یہ ہے کہ واقعاتی مماثلت موجود ہے, بالکل موجود ہے. کرتے پر اعتراض کرنے والے پر مقدمہ چلایا گیا, نہ اسے ہراساں کیا. سیدنا نے ریاست کی طاقت استعمال کے ذرا واپس نہیں لی. وہ ایسا کرتے تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا. سب جانتے تھے کہ امیر المومنین غلط دعویٰ نہیں کر سکتے, مگر آپ عدالت گئے, جج نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو جج کے خلاف ریفرنس کرنے کا سوچا تک نہیں. اپنے ارد گرد دیکھیے, غور سے دیکھیے, تحقیق کر لیجیے. ایسا مسلمان ملکوں میں نہیں دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے, اور جو کچھ مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے اس سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں. لیکن اصل المیہ یہ نہیں کہ ایسا ہمارے یہاں نہیں ہو رہا. اصل المیہ یہ ہے جب ہم وقت سے کرتے اور زرا والے واقعات سنتے اور سناتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ آج کل حکمرانوں سے اس انداز کے سوال جواب کہاں ہو رہے ہیں. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ حکمران کی جواب دہی کی مجاز اب ہمارے پاس نہیں, کہیں اور ہے. اور جہاں ہے وہاں مسلمان گروہ در گروہ, امبو در امبو ہجرت کر کے جا رہے ہیں. یہ میراث کسی مسلمان ملک کے پاس ہوتی تو لوگ برطانیہ, امریکہ, آسٹریلیا جانے کے بجائے ادھر کا رخ کرتے.